तो अगर देह अभिमान में आ जाते हैं तो फिर वही छोटी छोटी बात में गुस्सा भी आ जाता है, चिढ़ते हैं, नाराज होते हैं, अशांत होते हैं, कभी दुखी भी होते हैं, परेशान होते हैं। फिर सोचते हैं अमृत वेला भी किया था, मुरली भी सुनी थी, सब क्या हो रहा है, स्थिति में हलचल हो रही है। तो क्या हो रहा है, विस्मृति। जो ज्ञान स्मृति में रहना चाहिए वो स्मृति में नहीं है तो समर्थी नहीं है। हम दादियों को देखते थे, दादी कई बार मुरली पढ़ती थी, बड़ी दादी तो चार बार निश्चित था रोज, और दादी जानकी को भी जब समय मिलता था वो मुरली पढ़ते थे। तो वो ज्ञान हमारी स्मृति में है। अब जैसे आज की मुरली में भी बाबा ने दो बातें पवित्रता के ऊपर अंडरलाइन कराया एक, और क्रोध के ऊपर भी कहा। धारणा की बात हर मुरली में होती ही है कोई ना कोई। तो अगर मुझे स्मृति में है तो कोई भी ऐसी परिस्थिति जब मेरे सामने आएगी तो हम क्या करेंगे, आज की मुरली में बाबा ने ये अटेंशन दिलाया था, मुझे ये अटेंशन रखना है। अगर कोई अपवित्रता वाला स्थिति आती है मेरे सामने तो भी मुझे विजयी बनना है, तो हम विजयी होंगे। आज हमारे पास बहुत साधन है मुरली रिवाइज करने के, हमारे हाथ में ही मुरली होती है, जब चाहो आप मोबाइल में देख सकते हो, व्हाट्सएप पे देख सकते हो, नेट पे देख सकते हो। तो हर दो घंटे में हम देख लें क्या मुख्य, सारी मुरली पढ़ने की बात तो नहीं होती है, जो मुख्य बात बाबा ने कही वो उसके सार वरदान में होती ही है। और दो मिनट पांच मिनट इतना टाइम तो हम सबको मिलता है, इतने बिजी हम नहीं होते कि हम दो पांच मिनट उसको स्मृति में नहीं ला सकें। मनन करना चाहिए, पर अगर समझो मनन में बुद्धि नहीं चलती है, कई बार ऐसा होता है मनन करना चाहते हैं लेकिन बुद्धि ही नहीं चलती है, या फिर उसके लिए ज्यादा टाइम चाहिए कि एक घंटा चाहिए तब जाकर हम बैठेंगे, उसके ऊपर सोचेंगे इस पॉइंट का क्या राज है, इसे कैसे यूज कर सकते हैं, किस परिस्थिति में यूज कर सकते हैं, कैसे ये विजय दिलाएगी, या दूसरी आत्माओं की सेवा में हम इसे कैसे काम में लाएं, जो भी उसकी गहराई में हमें जाना है। पर कम से कम हम रिवाइज तो कर सकते हैं मुरली, तभी वो हमारे शस्त्र समय पर काम करेंगे। अभी मानो कोई बात ऐसी हो गई जो हमें लगता है कि हमारे लिए बुरी है, बाबा कहता है हर बात में कल्याण है, ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा का फुल स्टॉप लगा दो, पता है कि ये कल्प पहले भी हुआ था, नथिंग न्यू, कल्प पहले भी मैंने इसे पास किया था, हम विजयी बने थे, अभी भी विजयी बनेंगे। पर अगर वो पॉइंट की गहराई नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ जाना हुआ है, तो क्या होगा, ड्रामा याद भी आएगा लेकिन काम नहीं करेगा, व्यर्थ संकल्प भी चल रहे हैं, प्रश्न भी उठ रहे हैं, क्यों क्या भी चल रहा है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसे नहीं होना चाहिए मेरे साथ, क्या मेरे ही भाग्य में ऐसा है, मेरे को ऐसे विघ्न क्यों आते हैं, मेरे साथ ही ऐसी परिस्थितियां क्यों पैदा होती हैं, और ड्रामा को भी सोच रहे हैं। ड्रामा है ना, ड्रामा कल्याणकारी है, पर वो कल्याणकारी वाली बिंदी फुल स्टॉप नहीं लग पा रहा, व्यर्थ संकल्पों की क्यों चालू है। तो इसका मतलब पॉइंट काम नहीं कर रही है, जानते तो हैं लेकिन शक्ति नहीं है उसके अंदर कि वो हमें विजयी दिला सके। तो जितना हम ज्ञान को यूज करेंगे उतना हमारा जमा का खाता, और सबसे अधिक तो शुद्ध संकल्प हमारे जमा होते हैं उसके अंदर, और सारा खेल ही मन का है। अगर मन का परिवर्तन हो गया तो बाकी सब परिवर्तन तो अपने आप सहज होते हैं। फिर दूसरा, गुणों का खजाना जो है हमारा, गुणों की धारणा कितनी है जीवन में वो हमारे चलन में दिखाई देती है। जितना गुणवान होंगे उतना हम दूसरों को सुख देते हैं, उतना हम भी संतुष्ट रहते हैं और दूसरों को भी हम संतुष्ट करते हैं। तो उसके लिए कहते हैं कि कर्मों की ध्वनि शब्दों से ऊंची होती है। चलो ज्ञान तो कई बार हम बोल लेते हैं, बोलना आसान होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमारे जीवन में भी हो। जिसको कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे, है ना, उपदेश देने वाले तो बहुत होते हैं लेकिन सचमुच वो उनके जीवन में हो, तो इसलिए कहा भी जाता है। लेकिन हम ज्ञान उतना नहीं सुना सकते, लेकिन अपने धारणा स्वरूप से, अपने जो गुण है उनसे हम प्रभाव डालते हैं। तो बाबा कहता है वो सेवा उस सेवा से भी बेहतर है। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स जिसको कहते हैं। तो गुण दान करने की सेवा इसको बाबा कहता है, अपने गुणों से दूसरों को प्रेरणा देना, उनको भी गुणवान बनाना। खासकर जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो हमारी यही सेवा काम करती है। आपका ज्ञान नहीं सुनते लोग, क्योंकि वो जानते हैं आपको, शुरू से जानते हैं। तो ज्ञान सुनाने जाएंगे तो आपको 10 बातें सुना देंगे कि हाँ हम जानते हैं आपको अच्छी तरह, आप चुप रहो, हमको नहीं सुनना है ये सब। लेकिन जो जीवन का परिवर्तन आपका दिखाई देता है उनको, जो आप सुख देते हो उनको, उससे वो प्रभावित होते हैं। भले बोलेंगे नहीं लेकिन मन पर जरूर उनके वो प्रभाव रहता है और वो उनको परिवर्तन करता है। ऐसे ही शक्तियों का खजाना बाबा ने हमें दिया है, तो शक्तियां भी समय पर काम करें, जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है। अब सहन शक्ति तो रोज ही चाहिए हमें, हर रोज कोई ऐसा होता है जो मेरी बात नहीं मानता है, या कोई गलती करता है, या हम कहेंगे कोई झूठ बोल देता है, या मेरे से कोई अच्छा व्यवहार नहीं करता, कोई मेरा अपमान कर देता है, कोई मुझे धोखा भी देता है, इस तरह की कोई ना कोई बात हमारे कार्य व्यवहार में होती ही है। तो फिर मैंने सहन कर लिया, माना मुझे पता भी ना चले कि ऐसा हुआ, जरा भी उसकी महसूसता भी ना आए, संकल्प भी ना चले। और अगर नहीं है सहन शक्ति तो हम रिएक्ट करते हैं तुरंत, मतलब अगर उसने कहा तो मैं भी एक का दो, दो का चार वाली बात, हम ब्राह्मण बनने के बाद तो इतना नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हमने मुख से नहीं बोला तो अपने हाव भाव से भी बोल दिया, मानो है ना, ऐसे अगर हमने रिएक्ट किया। फिर कुछ लोग सोचते हैं बहुत सहन करते हैं हम, अगर हम ये भी बोलते हैं कि हम बहुत सहन करते हैं तो बाबा कहता है वो भी सहन करना नहीं, हम सहन किसकी आज्ञा से कर रहे हैं? बाबा की आज्ञा से सहन कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो सहन करने वाला बाबा कहता है सहनशाह बनता है। बाबा की दुआएं हैं क्योंकि उसकी आज्ञा है, तो बाबा की दुआएं उसमें समाई हुई हैं, वो हमारी जमा होती है। लेकिन मानो हम चुप तो रह गए, पता है कि मुझे सहन करना चाहिए, चुप रह गए, उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन मन में चलता रहा, इसको कहा कि महसूस हो गया, फीलिंग आ गई। फिर हम बोले बिना नहीं रहेंगे, क्योंकि जो प्रेशर मन में बनेगा वो कहां ना कहां तो हमें रिलीज करना ही है। तो हम अपने जो दो चार लोग हैं उनको सुनाएंगे कि नहीं सुनाएंगे? जरूर सुनाएंगे कि देखो मैं, मेरे साथ ऐसा होता है, मैं कितना सहन करती हूँ या जो भी करता हूँ। तो बाबा कहता है सहन किया वो तो कमाल की, लेकिन अगर समाया नहीं तो चार लोगों के सामने बोल दिया तो क्या हुआ? धमाल कर दी तो जमा नहीं हुआ। तो दो, कई बार हमें सभी शक्तियों को एक साथ कार्य में लगाना होता है, और कई बार हमें परखना होता है कि किस समय कौन सी शक्ति चाहिए। अब सहन करने की जगह हमने समा लिया, जहां मुझे सहन करना था वहां तो मैंने सामना कर लिया, और जहां मुझे सामना करना है वहां मैंने सहन कर लिया, वो भी गलत निर्णय ले लिया। बाद में फिर पछताते हैं कि ऐसा क्यों कर लिया मैंने, ऐसे ऐसे नहीं करना चाहिए था, ऐसे कहते हैं बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन मैंने बोल दिया उस समय। तो साथ साथ सहन किया तो फिर समाना भी है, तब हमारा पूरा जमा होता है। परखने की शक्ति में भी माया अलग अलग रूपों से आती है, मोटे रूपों को तो हम सब जानते हैं, लेकिन जो माया के रॉयल रूप हैं, जो सूक्ष्म रूप जिसको बाबा अंश वंश कहते, विकारों के अंश वंश, वो हमें इतनी जल्दी समझ नहीं आते, वहां हम फेल हो जाते हैं कई बार, और उस रूप में माया फंसा लेती है ना। फिर अंश कई बार वंश बन के विकार का रूप भी ले लेता है। अब जैसे बाबा कहते हैं काम विकार के लिए लगाओ झुकाओ, फैमिलियरिटी में आना, प्रभाव में आना, ये सब काम विकार के अंश हैं। तो कोई भी व्यक्ति अगर मुझे इस रूप में आकर्षित करता है, अब हर एक के अंदर कुछ ना कुछ विशेषता गुण, और बाबा के बच्चे हैं तो स्नेह सहयोग की भावना ये सब होता ही है, लेकिन अगर हम किसी के विशेष झुकाव में चले गए, प्रभावित होते हैं पहले, फिर झुकाव में आ जाते हैं, फिर वो झुकाव लगाव में बदल जाता है, लगाव में बदलता है तो फिर उसके बिना मेरा काम नहीं चलता, वो मुझे चाहिए ही चाहिए, कोई भी दिल की बात होगी फिर उनके साथ करेंगे। फिर हम इसको गलत नहीं समझते, हम सोचते हैं बाबा तो निराकार है ना, शिव बाबा तो आकार निराकार है, तो अगर इस जीवन में कोई साथी नहीं होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा, तो मेरे दिल को कहाँ हल्का करें, कोई तो होना चाहिए जो समय पर मेरा साथी हो। तो बाबा कहता है, बाबा ने छुट्टी दी है, क्या कहेंगे, किसको सुनाना है, किसको सुनाना है, बाबा को ही सुनाना है। हाँ, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है, बाबा से मेरा योग नहीं लग रहा, जो टचिंग्स मुझे होनी चाहिए बाबा से, जो शक्ति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही, हाँ, जब बुद्धि बहुत उलझन में होती है तब ऐसा होता है, उस समय निमित्त बने हुए हैं। अगर सुनाना भी है तो कहाँ सुनाना है, जो निमित्त बनी हुई आत्मा है उसको सुनाना है। तो ये सूक्ष्म रूप माया के जिसे हम समझते नहीं, ऐसा तो होता ही है ना, ऐसा तो चलता ही है ना, इसके बिना कैसे काम चलेगा, लेकिन वो अंश फिर कई बार बड़ा रूप ले लेता है, माया का रूप ले लेता है, जिसको कहा रामायण में कि सीता के सामने जब सोने का हिरण आया, समझ नहीं सकी वो और उसमें आकर्षित हो गई, राम ने समझाने की भी कोशिश की लेकिन नहीं, मुझे तो ये हिरण चाहिए, सोने के हिरण से मैं वो कुटिया का श्रृंगार करूंगी, सजाऊंगी उसको। राम गए तो फिर वो मायावी था और उसने राम की ही आवाज लगाई, जब मरने लगा तो वो ये भी नहीं समझ सकी ये सचमुच राम की आवाज नहीं है, ये तो उसकी आवाज है, और उसने मजबूर मतलब किया लक्ष्मण को कि नहीं आपको जाना है। तो वो गया तो लकीर डाल के गया कि ठीक है इसके अंदर रहना। फिर रावण साधु का वेश धर के आया, उसको भी वो परख नहीं सकी, तो क्या हुआ, मर्यादा की लकीर का उल्लंघन हुआ और राम से बिछुड़ गई, मतलब राम से अलग हो जाना पड़ा। तो माया ऐसे हमें बाबा से दूर करती है, बाबा से अलग कर देती है। तो इसलिए सभी विकारों के सूक्ष्म रूप को पहचानना, और फिर बाबा ने जो हमें विधियां बताई हैं, उन विधियों से उन पर विजय पाना, निर्णय करने की शक्ति, सही समय पे सही निर्णय ले पाए जैसे बताया तभी सफलता होती है, सामना करने की शक्ति, परिस्थितियां जीवन में है ही हैं, कलयुग है तो परिस्थितियां है ही हैं, समस्याएं है ही हैं। अब आज जैसे कोरोना का संकट है सारी दुनिया में, लेकिन हमारी सामना करने की शक्ति और जो दुनिया वाले हैं उनके सामना करने की शक्ति में अंतर है, नहीं है, अंतर है ना, क्योंकि हमें पता है बाबा ने पहले से ही हमें तैयार किया है, बाबा ने कहा ये सब होने ही वाला है, अंत समय में ऐसा सब होगा, ऐसी ऐसी बीमारियां होंगी जिसका कोई इलाज नहीं होगा। फिर बाबा हमारे साथ है, जब बाबा मेरे साथ है, जो सर्व समर्थ है, उसकी छत्र छाया है, तो हमारा मनोबल ऊंचा रहता है। वो लोग कहते हैं इम्यूनिटी पावर अच्छी होनी चाहिए, तो अगर बहुत चिंता में आ जाते हैं, डर में आ जाते हैं ना, हमें तो पता है हर बात में कल्याण है, समय कल्याणकारी है, बाबा हमारा कल्याण कभी होने नहीं देगा। और अगर जैसे दुनिया वाले भय में आते हैं, चिंता में आते हैं, टेंशन में आते हैं, तो इम्यूनिटी कम होती है, क्योंकि उसका असर हमारे शरीर पर आता है। हम सब जानते हैं कि हमारे मन का असर हमारे तन पर आता है। आज बहुत बीमारियां तो टेंशन के कारण ही है। 70% बीमारियां इंसान को जो टेंशन चिंता वो हमें तो बेफिक्र बादशाह बनाया है बाबा ने। तो जब हम उस स्थिति में रहते हैं तो हमारी सामना करने की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। बाबा साथ है तो हमारा सामना करने मतलब फर्क हो जाता है उसमें। ऐसे ही सहयोग करने की शक्ति है। हम सभी सहयोगी हैं। हम तो पूरे विश्व की आत्माओं के लिए, बाबा कहते हैं पूरा विश्व ही एक परिवार है, सभी एक परमपिता परमात्मा की संतान है। तो हम तो विश्व सेवाधारी हैं, विश्व कल्याणकारी हैं। तो केवल ऐसे नहीं कि हमारा ये जो ईश्वरीय यज्ञ है उसमें तो हम सहयोगी हैं ही हैं। जो सहयोग हम बाबा के कार्य में करते हैं, जो तन मन धन हम लगाते हैं, वो तो हमारा पुण्य का खाता जमा हो ही रहा है। लेकिन पूरे विश्व के लिए हम सहयोगी हैं। और खास अगर आवश्यकता के समय हम सहयोग करते हैं, उसको बाबा कहता है वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। आज की दुनिया में भी देखो, कोरोना के समय में कितने लोगों ने ऐसे लोगों को सहयोग किया जिनको खाने पीने को नहीं, जो मजदूर थे, मतलब कुछ कमा नहीं पा रहे थे क्योंकि सब कुछ लॉकडाउन में उनका खत्म हो गया। तो किसने सहयोग किया? आपस में एक दो को सहयोग दिया ना। तो भले वो स्थूल सहयोग है, बाबा कहता है इस तरह की समाज सेवा हम बाबा के बच्चे इतना नहीं करते आज के समय में भी, लेकिन आवश्यकता थी ना ऐसे समय पर। भीख मांगने की बात नहीं, जो भिखारी है वो अलग चीज है ना? लेकिन ऐसा समय जो इतना मुश्किल समय कि वो सचमुच कमाना चाहे तो भी कमा तो नहीं सकते हैं, लेकिन उनको सहयोग दिया। तो बाबा भी बेगरी पार्ट को भी याद करते हैं कई बार कि उस समय जब बेगरी पार्ट था यज्ञ में, जब माताएं बहुत गुप्त रूप से सहयोग देती थी। हम सुनते हैं ना कैसे एक टाइम ऐसा था कि कुछ खाने को नहीं और किसी का मनी ऑर्डर में आया, तो उस समय वो जो सहयोग मिला वो कितना बड़ा पुण्य का खाता उस आत्मा का जमा हुआ। तो बाबा तो याद करते हैं कि एक कटोरी चावल भी ले आते थे। उस जमाने में ऐसे ही होता था, कटोरी चावल, एक कटोरी घी, एक कटोरी दाल, इसी तरह से सहयोग करते थे बेगरी पार्ट के समय में। तो जिस समय जो सहयोग की आवश्यकता है उसे परखना और उस तरह से सहयोगी बन जाना समय पर, वो हमारा खाता जमा करता है। और जो समेटने की शक्ति है या विस्तार को सार में लाने की शक्ति है, वो वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। क्योंकि बाबा कहता है जब व्यर्थ संकल्प हमारे बहुत चलते हैं उस समय हम फुल स्टॉप लगा सकें। फुल स्टॉप लगाना माना मन को तुरंत एकाग्र कर लेना। हम जिस स्थिति में मन को स्थित करना चाहें उस स्थिति में मेरा मन स्थित हो जाए। क्या वो पावर है मेरे अंदर जिसको बाबा कंट्रोलिंग पावर कहता है? कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर या ब्रेक पावरफुल हो हमारी। और अंत समय में यही हमें पास विद ऑनर बनाने वाली है, क्योंकि अंत की जो परिस्थितियां होंगी वो बहुत हिलाने वाली होंगी। कुछ रिहर्सल तो हमने अभी भी अनुभव कर लिया है ना। एक रिहर्सल जैसे अच्छी रिहर्सल बाबा ने करा दी अभी, तो हम समझ सकते हैं कि जब विनाश काल का समय होगा तब चारों तरफ से हम जानते हैं कौन कौन सी चीजें हमें हिला सकती हैं। माया हिलाएगी, हमारे खुद के संस्कार, प्रकृति भी हिलाएगी, तमोगुणी आत्माएं जो शरीर छोड़ेंगी जिसको बाबा इविल सोल्स कहते हैं, वो भी उसका भी प्रभाव हो सकता है। जो वायुमंडल वाइब्रेशंस हैं उसका भी प्रभाव हो सकता है। लेकिन वो सब होते हुए भी स्थिति क्या हो, एक बाप दूसरा ना कोई, मन उसमें टिका है तो कोई हिला ना सके, तब हम पास हो सकेंगे। और उसको बाबा कहता है बहुत काल का अभ्यास से, उस समय सोचो कि मैं आत्मा हूं तो कुछ नहीं होने वाला, वो आत्मा की बिंदी टिकने वाली भी नहीं है। तो ये शक्तियां मेरी समय पर काम करती हैं। और बाबा कहते हैं मेरा स्टॉक फुल हो पहले, मेरा स्टॉक फुल होगा तो फिर हम दूसरों को भी सहयोग दे सकेंगे। अगर मेरा ही स्टॉक फुल नहीं है, मैं ही अपनी शक्तियों को काम में नहीं लगा पा रही, तो दूसरों को हम कैसे दे सकते हैं? देने वाला दाता कौन होता है? जो खुद संपन्न होता है। अगर खुद ही संपन्न नहीं है तो कैसे देंगे? जैसे हम दुनिया में भी कहते हैं ना, जो गरीब है उसको तो चाहिए, दान कौन करता है? जो धनवान होता है वही दान कर सकता है, क्योंकि उसके पास आवश्यकता से ज्यादा है तो वो देगा। तो मेरे पास मेरा स्टॉक फुल है, मतलब हम संपन्न हैं, तब जाकर के हम दूसरों को भी। और अंत समय में बाबा कहता है क्यों होगी आपके आगे, इतनी आत्माएं होंगी तो जैसे कि अपनी दृष्टि से भी आपको, सिर्फ आपने दृष्टि दी और उससे आत्माओं को मुझे मिल गया ऐसी महसूस ना आए, ऐसा मतलब पार्ट बजाना होगा। फिर समय का खजाना, जो समय मिला है वो कितना अमूल्य है। हमें संगम युग तो वैसे ही छोटा सा युग है, लेकिन उस छोटे से युग में भी हमें कितना समय मिला। हम कब से ज्ञान में आए? कुछ साल हुए होंगे ऐसा कहेंगे, 5 साल 10 साल 15 साल, और कितना समय ये संगम युग है हमें पता नहीं। चलो संगम युग को छोड़ो, हमारा जीवन कितना समय है ये भी कोई गारंटी है? तो कितना सा समय मिला हमें जमा करने का, ऐसा ही कहेंगे ना। तो वो समय में एक एक मिनट हमारा, या बाबा एक एक सेकंड भी कहता है, वो उसे हमें वेस्ट नहीं करना है। वो एक एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, ऐसे समझो। तो कई बार हम ऐसे ही समझो आपस में बातें कर रहे होते हैं, या यूं ही थोड़ा फ्री हुए तो टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया बहुत साधन है टाइम वेस्ट करने के, उसमें चले गए तो कितना टाइम निकल गया पता ही नहीं चलता। फिर सोचेंगे समाचार ही तो देख रहे थे, या समाचार ही तो सुन रहे थे, थोड़ा मनोरंजन ही तो कर रहे थे, हमने किसी का बुरा तो नहीं किया ना, ऐसे सोचते हैं, कुछ बुरा कर्म तो नहीं किया ना। पर बाबा कहते हैं चलो बुरा कर्म नहीं किया आपने, माइनस नहीं किया, लेकिन जमा भी तो नहीं किया ना। फिर माना किसी का भला भी तो नहीं किया, किसी को सुख भी तो नहीं दिया। तो जमा कब होगा? जब हम सुख देंगे। तो फिर वो हम प्रयास करें कि हमारा समय इस तरह से सफल हो कि हमारा जरूर जमा हो, वो वेस्ट ना जाए टाइम। फिर समय के साथ साथ श्वास का खजाना, अब श्वास जो है हमारे बाबा की याद में जाए, माना निरंतर याद हो। कोशिश तो रहती है, हम बाबा के बच्चों की कोशिश रहती है कि हम बाबा को निरंतर याद करें। जैसे भक्ति में भी जो अच्छे भक्त होते हैं या सच्चे भक्त होते हैं, वो श्वासों श्वास सिमरने की कोशिश करते हैं कि एक भी श्वास मेरा, जैसे मानो उनको मंत्र मिला हुआ है, उनको तो ऐसे ही होता है ना, मंत्र लेते हैं गुरु से, या नाम मिला हुआ होता है तो मंत्र चलता रहे अंदर, या नाम चलता रहे जिसको वो अजपा जाप कहते हैं। तो अब हमें वो मंत्र तो नहीं जपने हैं, हमारा मंत्र तो मन मना भव है, बाबा याद रहे हमें। बाबा तो फिर भी हमें कहते हैं कि चलो 8 घंटा आप शरीर निर्वाह करो, 8 घंटा आप आराम करो, लेकिन 8 घंटा मुझे याद करो। और जितना हम बाबा को याद करेंगे उतनी कमाई है। बाबा कहता है कि आप याद का बिंदु लगाते हो, है ना, क्योंकि बाबा बिंदु है, मैं आत्मा भी बिंदु हूं, तो जब हम याद का बिंदु लगाते हैं तो हमारी कमाई में भी बिंदु लगता जाता है। और याद से तो सब कुछ जमा होता है, हमारी शक्तियां भी बढ़ती हैं, हमारे गुण भी बढ़ते हैं, जो भी हमें प्राप्तियां हैं, जो भी खजाने हमें मिल रहे हैं, वो सब याद से मिल रहे हैं, तो कोशिश करना है कि अधिक से अधिक समय, अभी जैसे आप समय मिला, सबको बहुत समय मिला, तो वैसे तो बैठक योग, कर्म योग बाबा हमें कहता है, फिर भी कम से कम 4 घंटे का हमारा बैठक योग होना चाहिए, क्योंकि जब हम बैठकर योग करते हैं तब हम पावरफुल ज्वालामुखी योग जिसको बाबा कहता है, पूर्ण एकाग्रता वाला योग हम कर सकते हैं। तो ये चार्ट हमें रखना चाहिए अपनी याद का, और बाकी तो कर्म योगी बन करके सब मिलाकर के 8 घंटे का मिनिमम चार्ट हो, अगर नहीं और अच्छा कर सकते हैं तो और भी, लेकिन मैं समझती हूँ कि इतना भी मुश्किल होता है। कोई है जिनका 8 घंटे का चार्ट है याद का, जो समझते हैं कि हमारा 8 घंटे का चार्ट हो जाता है? नहीं, सहज नहीं। अच्छा चलो, 8 नहीं 4 घंटे का कुछ है, तो उसको और बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही संकल्प का खजाना हमारा, तो संकल्पों में बाबा हमें कहते हैं कि जितने हमारे शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प हैं, जितने हमारे कल्याणकारी संकल्प हैं, फिर चाहे वो कैसी भी आत्मा है, कैसी भी आत्मा के प्रति यदि हमारी सदा शुभ भावना रहती है तो वो हमारा जमा होता है। और अगर हमारी जैसी आत्मा वैसी भावना, भावनाएं बदलती रहती है ना आत्माओं की, जैसी जैसी आत्माएं संपर्क में आती है, तो अगर इस तरह से हमारा मन चलता है तो फिर उस हिसाब से हमारा प्लस माइनस होता है। तो ये अटेंशन रखना है, क्योंकि ये सूक्ष्म पुरुषार्थ है। भावनाएं जो बदलती हैं वो हमें पता भी नहीं चलता, कब मेरी किसके प्रति नेगेटिव भावना हो गई, रियलाइज भी इतना जल्दी नहीं होता है बाद में। जितने व्यर्थ संकल्प चले, जितने नेगेटिव संकल्प चले, उतना हमने माइनस किया। और विश्व की सेवा, जो मनसा सेवा हम करते हैं, वो तो संकल्पों के द्वारा ही सेवा है। जितना हमारा मन साइलेंस में होता है, मन के मौन की हम बात करते हैं ना, अभी सुना मौन के ऊपर क्लास, तो जितना हमारा मन साइलेंस में होगा उतना ही पावरफुल विश्व की आत्माओं तक हम वो वाइब्रेशंस फैला सकेंगे। अभी भी जो अव्यक्त मुरली बाबा की चली, सीजन की पहली मुरली बाबा ने क्या अटेंशन खिंचवाया, क्या अटेंशन खिंचवाया, बार बार मनसा सेवा। मन भी बिजी रहेगा, उसमें अपना भी फायदा है और दूसरों की सेवा कर रहे हैं तो जमा भी हो रहा है। फिर हम सभी सेवाएं करते हैं, जो भी हम सेवाएं करते हैं वो सेवाओं से हमें दुआएं मिलती हैं, क्योंकि सुख देते हैं हम सेवा करके। तो जो दुआएं हमारी जमा होती हैं वो तब जमा होती हैं जब सेवा हमारी सही विधि से है। अगर हमारी सेवा निस्वार्थ सेवा है, निमित्त भाव से निर्विघ्न सेवा है, जिसमें मैंपन मेरापन नहीं है, या हम कहेंगे नाम मान शान का स्वार्थ नहीं है, ज्यादातर स्वार्थ यही होता है, मैंपन होता है ना, मेरी सेवा है, मैं करती हूँ, मेरी जिम्मेवारी है, मेरी सेवा दूसरी कैसे कर सकता है, या मेरे अंदर ये विशेषता है तो मेरी विशेषता से सेवा नहीं ले जाती, मुझे नहीं कहा जाता, मुझे नहीं पूछा जाता, ऐसे इस तरह के जो सेवा में संकल्प कई बार चलते हैं। जब भक्ति में भी लोग क्या करते हैं, भक्ति में भी ऐसा होता है ना, भगवान के सामने जो भी करेंगे फल की इच्छा से करेंगे, मैंने ये व्रत किया तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, ये मेरी मनोकामना ये पूरी होगी, तो भगवान के लिए जो भी किया उसमें कोई ना कोई भावना कामना है ही है। तो हम बाबा के बच्चे भी वो भक्ति के संस्कार यहाँ भी इमर्ज करने लगते हैं, तो फिर वो जमा इतना नहीं होता, होता है पर फुल जमा हो, हमारा 100% जमा हो वो नहीं होता। जहां मैंपन मेरापन आ गया, अभिमान आ गया, बाबा कहता है अगर सेवा में कहीं भी अभिमान आ गया तो माइनस हो जाती है। जितना गुप्त सेवा हम करते हैं, कईयों को वर्णन करने की आदत होती है, मैंने ये किया, मैंने इतना किया, जो भी हो, चाहे हम तन से कर रहे हैं, चाहे हम धन से कर रहे हैं, धन की सेवा भी गुप्त दान महापुण्य कहा जाता है, भक्ति में भी इस चीज को मानते हैं, वहां भी हम कहते हैं कि मानो किसी ने मंदिर बनाया और उसने अपना प्लेट लगा दिया उसके ऊपर, तो उसने अपना फल यहीं खा लिया, वो उसका जमा नहीं होने वाला, पुण्य जमा नहीं होने वाला। तो यहां भी अगर हमने वर्णन किया बहुत, आधा हमने यहीं समाप्त कर दिया, और अगर उसमें कोई विघ्न आ गया, कभी भी कोई टकराव हो जाता है या कोई ऐसी बात हो जाती है, तो पूरा खत्म, वो खाता समाप्त हो जाता है। तो सेवा भी हम अगर सभी प्रकार की सेवा कर रहे हैं, मनसा वाचा कर्मणा जो हम तन मन धन कहते हैं, तो हरेक के 100% मार्क्स है, हरेक सेवा के मार्क्स हैं। केवल एक प्रकार की सेवा नहीं, लेकिन सभी प्रकार की सेवा हम कर रहे हैं। फिर बाबा कहता है अच्छा चलो, कई सेवाओं में तो चांस की बात होती है, मानो चांस मिला तो हम करेंगे। अब जैसे वाचा सेवा है, चांस होगा तब सेवा करेंगे, लेकिन मनसा सेवा में तो कोई चांस की बात नहीं है, स्व की सेवा है उसमें कोई चांस की बात नहीं है, यज्ञ सेवा है वो भी चांस की बात होती है, अभी जब कोई सेवा का ऐसा प्रोग्राम होगा तब चांस मिलेगा। तो जिन सेवाओं में चांस की बात नहीं है, जो हम हमेशा कर सकते हैं, मानो दो प्रकार की सेवा भी अगर हम निरंतर कर रहे हैं तो भी हमारे मार्क्स बढ़ते रहते हैं, मनसा सेवा और स्व की सेवा, ये तो हम निरंतर कर सकते हैं, इसमें तो कोई चांस की जरूरत नहीं। बीमार हो तो भी हम कर सकते हैं, बिस्तर पर हैं तो भी, अगर मन स्वस्थ होना चाहिए, मन बीमार नहीं होना चाहिए। और बाकी कर्मणा सेवा, अगर हम घर परिवार में भी रहते हैं लेकिन हम ये समझ के करते हैं कि हम बाबा की सेवा के लिए कर रहे हैं, या जिनके भी निमित्त बाबा ने हमें बनाया है, वो भाव अगर ट्रस्टी भाव है हमारा, जिसको बाबा कहते हैं मेरा नहीं तेरा है, तो फिर वो भी हमारा जमा होता है, उसमें भी जो हमारे वाइब्रेशंस होते हैं, क्योंकि भाव अगर शुभ भाव है तो वो फिर जमा करता है। अगर हमने सर्विस की बजाय डिससर्विस कर दी, ऐसा भी होता है कि हम सर्विस बहुत कर रहे हैं लेकिन कोई कारण से एक बार मेरे से ऐसा कर्म हो गया, इसको बाबा कहते हैं ना कि सद्गुरु का निंदक, तो अगर दिस सर्विस हुई तो फिर जो आपने 10 बार सर्विस की वो सब खत्म। माना ये कर्मों की गति जो बाबा ने हमें समझाई है, अगर हम इनका अटेंशन रखते हैं तो हम माइनस नहीं करते हैं, जमा करते जाते हैं। फिर अगर विकारों के वश हो जाते हैं, तो एक का पदम गुना कमाई है तो एक का 100 गुना दंड भी है, ये भी बाबा हमें कहता है। और उसमें भी सबसे ज्यादा कहता है कि अगर काम विकार के वश हो गए, तो काम विकार के वश होकर के कोई विकर्म किया तो बाबा कहता है सारी की कमाई जट हो जाती, जो मुरली में भाषा आती है बाबा की यही भाषा होती है। या फिर क्रोध के वश हमने किसी को अपशब्द कह दिए, किसी को दुख दे दिया, तो भी हमारा 100 गुना वो दंड हो जाता है। लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष कोई भी विकार का प्रभाव मन पर आया, माना हमने माइनस किया। तो जो हम जमा करते हैं, जो हम सेवा कर रहे हैं तन मन धन से, वो भविष्य में हमें वैसी ही प्राप्ति होती है। जैसे तन के लिए बाबा कहता है सदा आपको स्वस्थ निरोगी सुंदर तन मिलेगा और दीर्घायु होगी आपकी, तन की सेवा का जो हमें फल मिलता है। मन की सेवा, सदा ही मन प्रसन्न रहेगा, मन शांत होगा, और जो भक्ति में भी चित्र बनेगा आपका, जो चित्र हमारा पूजा का चित्र बनने वाला है, वो भी उतना ही सुख शांति देने वाला होगा। भक्त दर्शन करेंगे तो दर्शन मात्र से ही उनको वो शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और जो धन है वो इतना अखिचार धन होगा। फिर यहां भी धन की सेवा में भी कहते हैं कि दिल से की या दिमाग से की। फिर बाबा कहता है जो गरीब है, अगर उसने दिल से 1 रुपया भी दिया तो उसके 1000 के बराबर है, और अगर कोई दिखावे से करता है, वही जैसे कहा नाम मान शान के लिए करता है, तो फिर उसका भले ही वो बहुत बड़ा अमाउंट दे रहे हैं लेकिन फिर भी उतना जमा नहीं होता है। तो जो भी हमने जमा किया, जिसको बाबा कहते हैं मुट्ठी चावल जो सुदामा के हैं, उसके बदले में अखिचार धन सतयुग त्रेता दो युग में होता है, पद्मा पद्म पति होते हैं, और उसके बाद भी आराम की दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी धन के भिखारी नहीं बनेंगे, ये बाबा की गारंटी है अपने बच्चों के प्रति। और जो समय सफल करते हैं तो वो सृष्टि के सर्वश्रेष्ठ समय जो सतयुग का समय है उसमें आते हैं और श्री कृष्ण के साथ खेलना पढ़ना रास करना, श्री कृष्ण की दुनिया में हम सब आना चाहते हैं ना, तो उस समय में आने का भाग्य उन आत्माओं को मिलता है। और जो सेवा करते हैं, जिनका जमा का खाता भरपूर है, बाबा कहते हैं उनके चेहरे से वो नजर आता है। दुनिया में भी जो संपन्न आत्माएं होती हैं, वो उनके चेहरे से पता चलता है, उनकी जो झलक फलक होती है वो अलग ही होती है। तो ऐसे ही जो बाबा के बच्चे हैं जिनका जमा का खाता फुल है, उनके चेहरे पर वो ईश्वरीय नशा और खुशी दिखाई देगी, उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी। बाबा कहते हैं जैसे चेहरे और चरण से सेवा, बाबा कहता है तो अपनी सूरत से ही वो आत्माएं सेवा करने वाली होंगी। तो हम में से तीन प्रकार के होते हैं, एक तो है जो कमाते हैं और खर्च भी करते हैं। दुनिया में भी ऐसे होता है ना, रोज का रोज कमाओ रोज का रोज खाओ, बैलेंस नहीं रहता है, इतना ही कमाते हैं कि वो यूज हो जाता है। तो बाबा के बच्चे भी ऐसे हैं कि उतनी ही कमाई करते हैं कि बस अपना काम चल जाए। फिर दूसरे हैं जो कमाते हैं लेकिन जमा करते हैं, खर्च नहीं के बराबर, तो उनका जमा का खाता भरपूर होता है। और तीसरे प्रकार के होते हैं जो कमाते कम है खाते ज्यादा है, माइनस बैलेंस, माना कर्जदार इसको कहते हैं। तो हमारा चार्ट हमें चेक करना है रोज, इसीलिए बाबा कहता है रोज चेकिंग करो। जैसे बिजनेसमैन होते हैं ना, तो रोज अपना देखते हैं आज के दिन कितनी कमाई हुई। आप में से कोई है बिजनेसमैन तो करते होंगे ना, अपना बैलेंस चेक करते हैं कि आज सारा दिन में कितना कितना कमाया। तो ऐसे ही रोज हमें अपनी कमाई को चेक करना है, जो भी खजाने बाबा ने हमें दिए हैं बताए हैं उसके अनुसार कि मेरा प्लस में है या कहीं माइनस में तो नहीं चला गया। तो जब हम जो हमें बाबा ने इतना सौभाग्य दिया है वर्तमान समय, उसका इतना अटेंशन रखेंगे तो सचमुच बाबा से जो पूरी कमाई हमें करनी चाहिए, पूरे कल्प की कमाई जो हमें करनी चाहिए, वो कमाई हम जमा करके और पूरा भरपूर हाथ जाएंगे। दुनिया में तो लोग कहते हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन हम क्या हैं, पूरे कल्प के लिए अपनी कमाई भरपूर करके भाग्य बना के जाएंगे। ओम शांति।
सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो। शांति के देश को शांति के देश को शांति सागर से संबंध करते चलो।
सबसे उत्तम यही सेवा करते चलो
सबके दिल में प्रभु प्यार भरते चलो।